हेडिंग है, अंदर और बाहर की बुराइयों को क्या करना है, विल कर दो। तो क्या हो जाएगा, विल पावर आ जाएगा। विल पावर अर्थात मनोबल, इच्छा शक्ति, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। तो इच्छा शक्ति या मन की शक्ति या नियंत्रण शक्ति या आत्म नियंत्रण करना, वो सारा आने का साधन है। सब कुछ क्या कर दो, विल कर दो। विल कर दो अर्थात, विल अर्थात, विल पावर अर्थात इच्छा शक्ति, विल अर्थात वसीयतनामा, विल अर्थात, विल के कई सारे अर्थ है। विल का एक अर्थ है इच्छा, इच्छा शक्ति, विल पावर। विल का एक दूसरा अर्थ है, वो है वसीयतनामा, इच्छा पत्र। मृत्यु से पहले चल अचल सारी संपत्ति कानूनी तौर पर किसी के नाम करना, उसका प्रबंध, वो है विल करना। संसार में विल पावर बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती है। यहाँ बाबा विल पावर बढ़ाने के लिए कोई अद्भुत एक नई चीज बता रहे हैं कि जो बुराइयां है अंदर और बाहर, उसको विल कर दो, दे दो, स्वाहा कर दो, समर्पण कर दो। तो क्या हो जाएगा, विल पावर आ जाएगी। संसार में विल पावर बढ़ाने के लिए बहुत कुछ, हजारों किताबें लिखी हुई है जिससे विल पावर बढ़ता है। विल पावर कैसे बढ़ता है, और विल पावर कैसे बढ़ेगा, छोटे छोटे लक्ष्य रखना और उन्हें कंप्लीट करना। संसार में बहुत सारी किताबें लिखी है इसके बारे में। विल पावर का केंद्र जो है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यहाँ जो ब्रेन का सामने का हिस्सा है एकदम ब्रुकुटी के पीछे, जिसको कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल एरिया कहते हैं, फ्रंटल एरिया। तो ये जो प्री फ्रंटल एरिया कॉर्टेक्स है, उसका संबंध विल पावर से है। तो इस विल पावर को चैनलाइज करने के लिए, इस विल पावर को बढ़ाने के लिए कई सारी विधियां हैं संसार में। जैसे कि एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करो तो विल पावर बढ़ेगा, दूसरा एक्सरसाइज करो तो विल पावर बढ़ेगा, तीसरा मेडिटेशन करो तो विल पावर बढ़ेगा, चौथा साधना करते, भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं करो तो विल पावर बढ़ेगा, और कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस करो तो विल पावर बढ़ेगा। बच्चों पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इसके लिए विल पावर बढ़ाने के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जैसे कि एक सबसे प्रसिद्ध जो एक्सपेरिमेंट है वो मार्शमेलो का है। मार्शमेलो एक प्रकार की मिठाई होती है। तो एक बच्चे को एक कमरे में रख दिया फॉर अनडिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय के लिए। वो एक ऐसा फल है कि फल या मिठाई टाइप का है जो खाना पसंद नहीं करते वो। अब उसको ऐसा कहा गया है कि ये इतने समय में तुम्हें खाना है। अगर वो खा लेता है तो उसे दूसरा नहीं दिया जाएगा, अगर वो नहीं खाता है तो उसे फिर दूसरा दिया जाएगा, वो भी उसे खाना पड़ेगा। इस तरह के भिन्न भिन्न एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिससे कि उसकी इच्छा शक्ति बढ़े, कि मुझे जो करना नहीं है, उसके मन को जो अच्छा नहीं लगता है, अब उससे वो कराना है तो उसको कोई प्रलोभन दिया जाता है। इस तरह की बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, जैसे कुछ कुछ कार्य ऐसे हैं कि जो हमको इच्छा नहीं होती करने की परंतु करना चाहिए, अब वो जो करना चाहिए परंतु इच्छा नहीं है, वहां पर इच्छा शक्ति को प्रकट करना होता है या फिर वहां पर लानी होती है विल पावर को, तभी वो कर सकेंगे। तो इस तरह से ये सारे एक्सपेरिमेंट्स या सारी जो चीजें की जाती है संसार में, वो सारी है किस लिए, विल पावर को बढ़ाने के लिए। बाबा यहाँ बात कर रहे हैं कुछ और चीज की। बाबा कह रहे हैं कि विल पावर कैसे बढ़ेगा, अगर अगर अंदर बाहर जो बुराइयां है उनको अगर विल कर दो, सुपुर्द कर दो किसी के, स्वाहा कर दो कहीं पर, समर्पण कर दो उनका, दे दो किसी को, किसी के नाम कर दो, तब विल पावर बढ़ जाएगा। उदाहरण दिया किसका? ब्रह्मा बाबा का, कि उसने कुछ सोचा, कुछ देखा नहीं, ना सोचा ना देखा, बस विल कर दिया। उदाहरण दिया फिर से बाबा ने, झाटकू और जो झाटकू नहीं है वह सबसे पहले कौन स्वीकार होता है? जो झाटकू, बलि प्रथा भारत में बहुत प्रचलित है कि जहां पर बलि दी जाती है, तो जो पहले नंबर में स्वीकार होता है, बाबा ने कहा है, उसको शक्ति भी ज्यादा मिलती है। जो पहले नंबर पर स्वीकार नहीं होता, उसे शक्ति भी इतनी नहीं मिलती है। इसके लिए जैसे साकार ने सब कुछ स्वाहा कर दिया, सब कुछ विल कर दिया, बिना सोचे बिना समझे, उस समय कोई सोच ज्यादा नहीं चला, सोच सोच के नहीं किया जाता है, ये धक से किया जाता है। तो धक से स्वाहा कर देना, तो सब कुछ स्वाहा किया, पर भी कौन सी बातें, वो स्थूल बातें भी नहीं है, यहाँ पर सब कुछ सूक्ष्म है। स्थूल कर देना फिर भी आसान है, परंतु यहाँ बातें चल रही है बुराइयां, कमजोरी, अवगुण, घेजो मारा गुनरो सागर अवगुण माँ बिसरा जो जी। मीरा का भजन है बड़ा प्रसिद्ध, कि गुण ले लो और अवगुण विसार दो, या अवगुण समाप्त कर दो मेरे सारे। तो जो भी अंदर में कमी है, कमजोरी है, खामियां है, फ्लॉ है, डिफेक्ट है, वो सब कुछ दे देना। जैसे वो संसार में अटॉर्नी बनाते हैं ना किसी को बनाते हैं लॉ में, कि वो सब कुछ करेगा उसके नाम पे सब कुछ, तो उस तरह सब कुछ स्वाहा कर दो। तो ये मुरली है 18 जनवरी 1970 की। इसमें बहुत सारी बातें कही है बाबा ने, छोटी मुरली है, परंतु अगर उसको डिवाइड किए तो कम से कम 7-8 अलग 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 दूसरी दूसरी बातें हैं। सबसे मुख्य बात तो हमने जो अभी चर्चा की, कि सब कुछ विल कर देना, एक धक से विल कर देना। जो जितना जल्दी विल करेगा, उतना वो जल्दी स्वीकार्य होगा और उतनी ही शक्ति आएगी। विल करने में देरी नहीं करनी है, सबसे पहली बात तो ये कही है बाबा ने। दूसरी एक बात जो कही है वो है कर्म बंधन। कर्म बंधन की रस्सिया साकार, बाबा ने कहा कि कर्म बंधन की जो रस्सिया है वो कहाँ तक टूटी हुई है। अगर कर्म बंधन की रस्सिया टूटी हुई नहीं है तो क्या होगा? मन में खींचतान होगी। जो टूटा हुआ है, जो बंधन छूटा हुआ है, वो फिर रुक नहीं सकता। जिसके बंधन छूटे हुए हैं वो भागेगा, वो यहाँ रुक नहीं सकता। तो यहाँ बाबा ने कहा है, बाप दादा केवल वर्तमान को नहीं देखते हैं, वर्तमान और भविष्य दोनों को देखते हैं। वर्तमान की सारी कर्म बंधन की रस्सियां टूटी हुई हो, तो वर्तमान की या भविष्य की सारी कर्म बंधन की रस्सियां जो है वो टूटी हुई है। कोई भी कर्म हमें बांधे ना, हमारी सारी रस्सियां टूटी हुई हो, सारे बंधन छूटे हुए हो, ऐसी हमारी अवस्था चाहिए, तो ही हम भाग सकेंगे। कहीं पर भी अगर फंसे हुए हैं तो क्या कहा? फंसे हुए हैं तो फास्ट नहीं जा सकेंगे, और जो फास्ट जाने वाले हैं वो कभी भी कहीं पर भी फंसेंगे नहीं, कोई भी चीज में फंसेंगे नहीं, किसी भी व्यक्ति में फंसेंगे नहीं, किसी भी प्रलोभन में, आकर्षण में, कोई भी साधनों में, कोई भी कर्म में, इस संसार की स्तुति में, नाम मान शान जो भी संसार का है, इन सब से परे रहेंगे, कहीं पर भी फंसेंगे नहीं। इसके लिए बाबा ने कहा, लास्ट को सामने रखो, लास्ट स्थिति को, तो हाई जंप भी लगा सकेंगे। तो ये इस मुरली की दूसरी बात है। मुरली की शुरुआत बाबा ने कहाँ से की है? पढ़ी है सबने? 69 की पूरी मुरली हमने रिवाइज की एक मास की। एक मास के अंत में हर एक को वही याद रहा जो जिसने पढ़ा था, बाकी नहीं याद रहा, थोड़ा थोड़ा रहा। तो ज्यादा हमको वही याद रहता है जो हम पढ़ते हैं, दूसरों ने पढ़ा, दूसरों की पढ़ाई, संगठन में किया सब कुछ, फिर भी जो हमारी मुरली थी बस वही हमें याद थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उस पे ही फोकस था सारा, दूसरा क्या बोलने वाला है उस पे हमारा कुछ फोकस इतना नहीं था। अगर हमारा 3 दिन के बाद है और 3 दिन के बीच में अगर बहुत सारे कोई कोई कह रहा है, वो सुनते हुए भी हम नहीं सुन रहे, हमारा ध्यान केवल लक्ष्य की तरफ रहता है, जो हमारी जब बारी है तब। तो ये तो विशेषता तो अच्छी है, परंतु ये एक नया रिजल्ट सामने आ गया। कोई भी स्टडी की जाती है ना, तो फिर पता चलता है ऐसा भी होता है। हमने तो अच्छे लक्ष्य से किया था कि सारा करना है, सबको करना है, पर रिजल्ट कुछ और ही हो गया कि जिसने जो पढ़ा था बस उसको वही याद रहेगा, बाकी सब छूट गया। तो हर चीज जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ कंक्लूजन, कुछ रिजल्ट निकलता है, और वो रिजल्ट के बाद फिर और उसको इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो अभी हम ये और कुछ सोचेंगे, अभी और क्या किया जाए। अचानक तो इस मुरली की शुरुआत कहाँ से की है बाबा ने, कहाँ आए हो, किस लिए बुलाया हुए, और बाप दादा क्या देख रहे हैं? हर सितारे की संपूर्णता की समीपता, क्लोजनेस टू परफेक्शन, परफेक्शन के कितने समीप आए हैं, यह देख रहे हैं। हर सितारे की समीपता, हर सितारे की विशेषता देख रहे हैं, हर सितारा किस रूप में है वो देख रहे हैं, किस लिए बुलाया है वो देख रहे हैं। तो यहाँ संपूर्णता की बहुत ही सुंदर परिभाषा बाबा ने दी है, जिस पर 69 में बहुत सारी मुरलियां चली है। संपूर्णता की क्या परिभाषा दी है यहाँ पर, हर बात को, सभी बातों को, हर रूप और हर रीति से परखना। जो भी बातें आ रही है उनको हर रीति से और हर रूप से परखना, वे एंड फॉर्म, हर वे, हर रीति से, हर रूप से, हर फॉर्म से उसे परखना। ये शक्ति अगर आ जाए तो ये है संपूर्णता, यही संपूर्णता की परख है, सबसे पहली परिभाषा। तो संपूर्णता अर्थात हमारी जो परख शक्ति है, व्यक्तियों को परखना, विचारों को परखना, उनके संस्कारों को परखना, उनके स्वभाव को परखना, व्यक्ति, फिर जो परिस्थितियां आ रही है उनको परखना, ये कैसी परिस्थिति है, क्या मैं इतना सशक्त हूं कि इसका सामना कर सकूं। अच्छा, व्यक्तियों से आने वाली परिस्थितियां, एक प्रकृति से आने वाली परिस्थितियां, कुछ व्यक्तियों से आने वाली परीक्षा, उनको भी परखना, या कुछ बातें जो होने वाली है, जो अभी आई नहीं है, जो होगी उनको परखना, ये भी सारी संपूर्णता की परिभाषा है। तो जितना हमारी स्थिति संपूर्णता की ओर चलेगी, उतना हम हर चीज को, छोटी छोटी बातों को परख सकेंगे, जो डिसीजन लेने हैं हमको, क्योंकि जीवन सुबह से लेकर रात तक एक ही चीज है, डिसीजन, निर्णय करना होता है, ये करना कि नहीं करना, यहाँ जाना कि नहीं जाना, इसके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए, उसके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए, सारा दिन ही हमारा निर्णय, परखना और निर्णय करना, परखना और निर्णय करना। जैसे कोई चिकित्सक होता है, उसका काम क्या है, एक ही काम है सारे दिन भर, कोई हाथ चलाना, घूमना फिरना या मेहनत करना काम नहीं है, सारा काम केवल इधर ही है, केवल निर्णय और परखना और निर्णय करना, परखना और निर्णय करना, सारा बुद्धि का काम है। तो जैसे उधर वैसे यहाँ, व्यक्तियों को, वस्तुओं को, प्रलोभनों को, आकर्षणों को, जो टेम्पटेशन आ रहे हैं उनको परख लेना, माया को, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, माया को ही परख लेना कि ये ही माया है, क्योंकि माया ऐसे भिन्न भिन्न रूप से आती है कि हमें वो समझ में ही नहीं आता है। जैसे जैसे योगी योग साधना में कुशल और प्रवीण होते जाता है, उसके सामने माया उस रूप में, डायरेक्ट रूप में नहीं आती है, ऊपर लिखा हुआ नहीं रहता है माया। कोई कोई उसको कहे ये करो वो नहीं करेगा, उसके लिए बहुत 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 अति सूक्ष्म रूप धारण करती है वो। संकल्पों में हलचल, दिनचर्या में हलचल, आवेश, क्रोध तो नहीं आएगा परंतु आवेश जरूर आएगा, वो भी माया है। आवेश, आवेग, भावनाओं का आवेग, ये सारी भिन्न भिन्न प्रकार की माया, प्रकृति द्वारा माया, शरीर के द्वारा माया, अलग अलग हिसाब किताब के द्वारा। तो यहाँ बाबा ने जो परिभाषा दी है संपूर्णता की, वो है सब बातों को हर रीति से हर रूप से परखना, ये है संपूर्णता। तो ये इस मुरली की तीसरी बात है। पहली हमने देखी विल करना, किसको, बुराइयों को विल कर देना, तो क्या हो जाएगा, विल पावर आ जाएगी, उसमें सोचना नहीं, साकार का उदाहरण, विल कर दिया। दूसरा देखा जो रस्सियां है कर्म बंधन की, वो टूटी हुई हो, जो बंधन है वो छूटे हुए हो, जो छूटा हुआ है वो रुक नहीं सकता, और जो फास्ट जाने वाला है कहीं पर भी फंसेगा नहीं। सबसे पहले चेकिंग तो ये है, कहीं मैं फंसा हुआ तो नहीं हूं, व्यक्ति में, संस्कार में, आदत में, या कोई ऐसा एक संस्कार है कि वो ही मुझे उसमें उसकी गिरफ्त में है, वो हमको बांधे हुए है, उससे छूट ही नहीं पा रहे। ज्ञान योग सब चल रहा है परंतु वो संस्कार बना हुआ है, जैसे फीलिंग आना, सेंसिटिव होना, या पास्ट इमोशनल जो हर्ट्स, जो भावनात्मक दुख है अतीत के, उनको बार बार स्मरण करना, एक घायल रूप में अपनी स्थिति, अंदर ही अंदर, ऊपर में तो खुश है परंतु अंदर से घायल है, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई पश्चाताप, ये सब भी क्या है, जो जहां फंसा हुआ है वो फास्ट जा नहीं सकता। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात हमने सुनी संपूर्णता। संपूर्णता अर्थात संपूर्ण परख शक्ति, हर रीति से हर रूप से, और जैसी हमारी परख शक्ति होगी वैसी ही हमारी निर्णय कर पाएंगे, जैसा निर्णय कर पाएंगे फिर निवारण सब कुछ होगा आगे। ये तीसरी बात है। चौथी बात, चित्र, चरित्र और विचित्र, इसमें बाबा ने थोड़ा सा गोल गोल घुमाया है। चित्र को याद कर रहे हो या चरित्र को देख रहे हो? चित्र के साथ साथ विचित्र भी याद है, ब्रह्मा, शिव बाबा और ब्रह्मा के चरित्र, इन तीन बातों को बाबा ने कहा है। अगर चित्र के साथ विचित्र भी याद है तो क्या हो जाएगा, चरित्रवान बन जाएंगे। या अलग अलग याद है या दोनों की याद मिली हुई है? तो यहाँ एक छोटा सा, एक अलग प्रकार की बातें यहाँ बाबा ने कही है। तो चरित्रवान बनने के लिए क्या करना है, चित्र को भी याद करना है और विचित्र को भी याद करना है। यहाँ चित्र का अर्थ है ब्रह्मा, और बाबा जो हमेशा चित्र का अर्थ कहते हैं कि बाप विचित्र है, शरीरधारी नहीं है, अशरीरी के लिए विचित्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। संसार में विचित्र अर्थात कुछ और, स्ट्रेंज, अनोखा, अद्भुत, अद्वितीय, अलग प्रकार का अर्थ है। बाबा जब विचित्र शब्द कहते हैं तो उसका अर्थ होता है अशरीरी, तो वो है विचित्र, ये है चित्र, और इसने जो कुछ भी कर्म किए वो है चरित्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटी। स्पिरिचुअल एक्टिविटी अर्थात चरित्र। तो जो दोनों भी याद रहेंगे तो क्या हो जाएगा, चरित्रवान, कैरेक्टर, चरित्रवान बन जाएंगे। ये एक बात की यहाँ पर। फिर बाबा ने चेकिंग की पॉइंट्स बताई है कि एक वर्ष हो चुका है बाबा को अव्यक्त हुए, तो यहाँ जितनी चेकिंग करेंगे और चेकिंग के बाद ज्यादा अटेंशन कर रख सकते हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है चेकिंग, बार 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 चेक करना, क्योंकि जब तक हम चेक नहीं करेंगे कोई भी चीज़, जैसे हमने अभी कहा ना 69 का, हमने कोई भी कुछ पुरुषार्थ करने के बाद उसे चेक करना होता है। एक है संगठन रूप में चेकिंग, एक है व्यक्तिगत रूप में चेकिंग। दो प्रकार, एक सामूहिक एक व्यक्तिगत। सामूहिक रूप में कितना फायदा हुआ और व्यक्तिगत रूप में कितना फायदा हुआ। सारी मुरलियाँ पढ़ी तो हमारे सामने रिजल्ट आया कि जिसने जो जिसकी थी वो उसको याद रही, बाकी लोग बाकियों की इतनी याद नहीं रही। ये है रिजल्ट। फिर इससे हम कुछ ये कंक्लूजन है, अभी जो नेक्स्ट स्टडी होगी उसमें कुछ और होगा, क्योंकि इससे हमने कुछ सीखा, कहीं ना कहीं ठोकर खाई है इससे, तो कुछ और करना पड़ेगा अभी तो, क्योंकि एक स्टडी दो स्टडी ऐसी स्टडीज की जाती है, मेडिकल में भी इस तरह की बहुत सारी स्टडीज होती है,
हमारी बार आ रही है।
तो उससे ये पता चल रहा है कि हमारा जब हमारे ऊपर आती है कोई भी चीज तभी हम करते हैं, तो भी हम ज्यादा अलर्ट रहते, जागरूक तभी रहते। दूसरों की परिस्थिति, दूसरों की समस्या इतना हमें प्रभावित नहीं करती, दूसरों का दर्द कुछ नहीं लगता है। जिसके पास जिसका दर्द है वो खुद ही जानता है। मीरा रोए चुपके चुपके, मारो दर्द ना जाने कोई, ऐसी बात है वो। मीरा का दर्द ऐसा है कोई नहीं जान सकता है। और मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। तो ये जो बात है ना, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। तो चेकिंग 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 कैसे करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चेकिंग करने को मन राजी नहीं होता है। मन बड़ा आलसी है इस बात में, उसको लगता है हो गया चलो अभी आगे। रुक जाना, ठहरना और रिव्यू करना अपने आप को कि ये है रिजल्ट एक हफ्ते की, ये हफ्ते में कुछ ज्यादा प्रगति नहीं हुई, ये स्वीकार करना बड़ा पत्थर रखना पड़ता है। इसके लिए बाबा ने कहा चेकिंग पहले, जितना अटेंशन चेकिंग जितना करोगे उतना अटेंशन ज्यादा रहेगा। जितनी ज्यादा चेकिंग, जितनी अच्छी चेकिंग, और चेकिंग में स्वयं के दोष निकालना कि मैंने ये ठीक नहीं किया, ये सबसे मुश्किल काम है दुनिया में। स्वयं स्वयं को देखना, स्वयं स्वयं के दोष निकालना कि मेरे से ये गलती हुई है, हुई है पहले तो स्वीकार करना उसको। जैसे बाबा मुरलियों में कहते ना, जब दुर्गति हुई है ये पता चले तब कुछ सदगति का मार्ग करे। अगर कोई स्वीकार ही ना करे, जैसे संसार के लोग कभी स्वीकार नहीं करते हम पतित है, उनको कहो तो बिगड़ते हैं। अगर कोई स्वीकार कर ले तो फिर सदगति का मार्ग खुलेगा, तो फिर पावन कैसे बना जाए इसके बारे में विचार चलेगा। अगर हम ये सोचे कि हमारा सब ठीक चल रहा है, हमारा अमृत वेला एकदम परफेक्ट ही चल रहा है, हम अगर यही सोचते रहे तो वो वैसा ही चलते रहेगा। ये सोचना कि इसमें और क्या सुधार करें।
अभी तुम कभी मानोगी नहीं कि तुम्हारी गलती है, तुम कभी सब सॉरी नहीं कहोगी। मैंने कहा मैं किसको सॉरी करूँ, आपको सॉरी करूँ या स्वयं को सॉरी करूँ।
तो स्वयं स्वयं को देखते रहना, स्वयं स्वयं को चेकिंग करते रहना, उसी से ही अटेंशन ज्यादा आएगा, नहीं तो हम अटेंशन नहीं दे सकेंगे। तो ये इस मुरली का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथी बात। उसके बाद में पांचवी, आगे आगे बाबा इस मुरली में कई सारे प्रश्न हैं, लगभग 20-25 प्रश्न एक के बाद एक पूछते जा रहे पूछते जा रहे पूछते जा रहे। बाबा ने कहा अव्यक्त मा, एक वर्ष की रिजल्ट क्या हुई, एक वर्ष का चार्ट कैसा रहा, ऐसे कुछ अलग अलग प्रश्न बाबा ने पूछे। और पांच प्रकार की परीक्षाओं का वर्णन है यहाँ पर। सबसे पहली जो परीक्षा थी उसमें बाबा ने कहा कई पास है, कईयों के लिए मुश्किल भी था। सबसे पहली परीक्षा थी निश्चय की परीक्षा, जो हो चुकी पिछले वर्ष, अभी 70वां वर्ष चल रहा है। निश्चय की परीक्षा पहली थी, परंतु बाबा ने कहा उसमें जो पास हो गए उससे भी बड़े पेपर अभी आने हैं, चार प्रकार के पेपर। एक तो पहला निश्चय का पेपर, फिर और चार प्रकार के पेपर। सबसे दूसरे नंबर का पेपर तन की समस्या है। तन की समस्याओं में बीमारी, निश्चय की परख तभी पता चलती है हमारे, कब, जब परमात्मा प्रेम कितना है, धारणाएं पर हम कितना चल रहे हैं, कितना श्रीमत का पालन कर रहे हैं, जब शरीर में कोई बीमारी आती है वहां पर ही पता चलता है। तन की समस्या, उसमें बीमारियां सारी आ गई, तो वहां पर एग्जैक्ट हमको दूसरे परख सकेंगे कि ये है इनकी स्थिति। कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा योगी हूं, परंतु हम देखते हैं अगर बीमार हो जाए तो स्थिति एकदम डाउन हो जाती है, तो उसको वहां फिर चेकिंग की आवश्यकता है। दो प्रकार की पर्सनैलिटीज होती है, एक होती है सरकमस्टेंशियल पर्सनैलिटी, एक होती है सबस्टेंशियल पर्सनैलिटी। सरकमस्टेंशियल पर्सनैलिटी मतलब परिस्थिति अगर अच्छी है तो हम अच्छे, परिस्थिति अनुकूल है तो पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, जब तक मधुबन में है सब कुछ अच्छा है, जैसे कुछ परिस्थिति गड़बड़ हुई तो हम में गड़बड़ होगी, जैसे किसी ने कुछ कह दिया, बोल दिया, डांट दिया, या संसार के वातावरण में चले गए, परिस्थितियां बदली, अनुकूल प्रतिकूल हो गई तो हमारे ऊपर प्रभाव हो गया, तो वो है सरकमस्टेंशियल पर्सनैलिटी। एक होती है सबस्टेंशियल पर्सनैलिटी, सबस्टेंशियल अर्थात शक्तिशाली, अचल अडोल व्यक्तित्व, कि जो परिस्थितियां कुछ भी हो वैसे ही रहेंगे जैसे है, परिस्थितियों से उसका कोई संबंध नहीं, स्वस्थिति वहां शक्तिशाली है। तो तो ये दो प्रकार की पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में डिस्क्राइब की जाती है। तो यहाँ बाबा बात कर रहे चार प्रकार की समस्या है। सबसे पहले निश्चय का पेपर आया, पास हो गए। दूसरा पेपर आएगा कौन सा, तन का, तन का पेपर अर्थात शरीर की बीमारियां। ऐसी ऐसी बीमारियां आएगी जो हमें सोची भी नहीं थी, चलते चलते फ्रैक्चर, अब बैठो लटके हुए बेड पर 3 महीने 2 महीने, क्या करे, बहुत उमंग है सेवा करने का पर कुछ कर नहीं सकते, एक ही जगह बैठना है। उसको व्यक्ति कितना जल्दी स्वीकार कर लेता है कि अभी वो, अब तक वो सेवा थी, अभी ये सेवा करनी है मनसा से, ये स्वीकार जो अंदर है, अंदर का भाव, उस पर वो आगे का जो समय है 1 महीना 2 महीना वो सब उस रीति से जाएगा। अगर वो स्वीकार ही नहीं करता है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, या उसके ऊपर संकल्प चलाता है बहुत सारे, हो गया फुल स्टॉप, अब ये सेवा है। हमको याद है हम एक बार एक सेंटर पे गए थे, उस सेंटर पर 2 ही स्टूडेंट है कई सालों से बस 2 ही स्टूडेंट आते हैं उस सेंटर पे, तो हमने उस, परंतु वो जो बहन थी उनकी स्थिति बहुत ही शक्तिशाली देखी हमने, तो हमने उनसे पूछा था यहाँ केवल 2 ही स्टूडेंट आते हैं, तो उसने कहा हम लोग ऐसा नहीं कि सेवा नहीं करते, परंतु वो कोकण का एरिया है वो, तो वहां पर तो पहले से ही मतलब इनको पता है, वहां पर नॉनवेज फिश वगैरह ज्यादा, मांस मच्छी खाते हैं, तो उनको पता है यहाँ जाना अर्थात ये सब छोड़ना पड़ेगा, बाकी सब अच्छा लगता है उनको, पर वहां जाते नहीं। तो सेवाएं तो बहुत करते हैं वो, जेल में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, कोर्स कराते हैं, पर रेगुलर नहीं हो पाते कोई। तो उस बहन ने कहा था कि इस सेंटर से पहले मैं किसी और सेंटर पे थी, माल बड़े सेंटर पे थी, और वहां पे दिन रात सेवा रहती थी, पर जैसे यहाँ आई तो यहाँ देखा बिल्कुल भी सेवा नहीं है, मतलब स्टूडेंट बढ़ते नहीं है कुछ भी करो। उसने कहा कि मैंने एक संकल्प लाया मन में कि ये जो परिस्थिति है अभी इसी के साथ मुझे जीना है, सेवा तो चालू है, परंतु इसको, इस भाव को उसने प्रेम से स्वीकार कर लिया कि ये समय, अब तक मैंने वो सेवा की, अभी ये समय मुझे अपनी स्थिति बनाने में लगाना है, कि स्टूडेंट है नहीं ज्यादा तो दिन रात पढ़ाई करना, स्थिति बनाना, योग का चार्ट बढ़ाना, ये सब चीजों में, नहीं तो दूसरा कोई होता तो परेशान हो जाता, यहाँ तो सेवा ही नहीं है, यहाँ ये नहीं है, वहां वो नहीं है, बहुत सारे संकल्प उत्पन्न हो जाते थे। पर उसने क्या कहा, इस परिस्थिति को मैंने प्रेम से स्वीकार किया, ये उसके वाक्य कितने साल पहले मैंने सुने थे पर अभी तक मुझे याद है कि ये परिस्थिति को मैंने प्रेम से स्वीकार कर लिया है, और उसको वो अपनी स्थिति बनाने में लगा रही है। तो सबसे दूसरी नंबर की जो समस्या बाबा ने कहा तन की, उसके बाद है मन की समस्या, मन में हलचल उत्पन्न होना, विकल्प उत्पन्न होना। बाबा ने कहा है ना, बीए का पेपर अव्यक्त तो महावाक्य है, बीए का पेपर एमए में फिर आएगा। पहले बीए होता है फिर एमए होता है, मतलब जब ज्ञान में आते हैं तो पेपर्स आते हैं बहुत सारे, फिर बहुत पुरुषार्थ करके या निश्चय से वैराग से उससे पार निकल जाते हैं और आगे बढ़ गए। अभी अभी सोच रहे कि वो तो गया, जो हम ज्ञान में आए थे तब जो पेपर आए थे, तब जिस प्रकार के बाबा ने कहा वो जो पेपर तब आए थे, ये फिर आएंगे इधर। एमए बीए का पेपर एमए में फिर आएगा। तो जो संकल्प विकल्प उत्पन्न हो जाना मन में, जिससे मुक्त थे अब तक, और वो फिर आ जाना, जैसे लोभ का कोई अनुभव ही नहीं है, कोई लोभ नहीं है मन में, परंतु फिर लोभ उत्पन्न हो जाना, पैसों का आकर्षण हो जाना। हमने सोचा, हम तो सोचते थे सोना तो बिल्कुल हमारे लिए मिट्टी जैसा है, फिर एक दिन पता चलना अभी सोने की घड़ी भी चाहिए, फिर सोने का वो भी चाहिए, दांत भी चाहिए, थोड़ा अच्छा लगता है। हमने तो सोचा था कि वो हम तो पूरा कोई लोभ है ही नहीं हमें, ये मन की समस्या, नए नए भाव, क्योंकि वातावरण उस तरह का है संसार में, वो प्रभावित करेगा, चाहे कितनी भी वैरागी आत्मा हो राग उत्पन्न करेगा। हमने सोचा था हमने तो काम विकार को जीत लिया, फिर से वासना प्रकट होगी, क्योंकि वातावरण ही वैसा है। अगर साधनाएं के पथ पर हम जागृत नहीं है तो ये सब कुछ होगा, बीए का पेपर फिर एमए में आएगा। इसलिए तीसरी बात है मन की समस्या है, और चौथी जो बाबा ने कही है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी? अलौकिक। लौकिक संबंध छोड़ दिए, पर इस अलौकिक परिवार से, एक जगह बाबा ने इस ब्राह्मण परिवार की बहुत महिमा भी की है, इसी मुरली में कहा इसका बहुत महत्व है। वो जो दैवी परिवार है उससे ये ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ है, एक तरफ ये भी कहा है, तो दूसरी तरफ ये भी कहा है कि जो समस्याएं हैं वो इसी परिवार से आएगी। छोटी बड़ी परिस्थिति समस्याएं, छोटी बड़ी बातें यहां से ही आएगी। और ये जो बातें हैं, पर इनको प्रैक्टिकल बातें मत समझना। क्या समझना? पेपर समझना, पेपर समझ के पास करना, पहले ही तभी बता दिया है बाबा ने। एक जगह ये भी कहा है कि मुश्किलातों को पार करना ये कमाल है, सहज को पार करना कमाल नहीं है। कमाल की भी परिभाषा दी है, कमाल अर्थात किसको कमाल कहेंगे, जिसने मुश्किल समस्याएं परिस्थिति ये सब से निकल कर आगे चला गया, जो उसको कहा जाता है कमाल। जहां परिस्थिति नहीं है, कुछ नहीं है, संपूर्ण प्रतिकूल परिस्थिति में बना जाता है, अनुकूल परिस्थितियों में नहीं, सब विघ्न ही विघ्न है, सब तरफ से खींचतान है, वहां पर सब विरोध कर रहे हैं, तब आत्मा ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। दो प्रकार की आत्मा है, एक है कि जिसको बहुत विरोध हुआ है ज्ञान में आने के लिए, एक है जिसको कोई विरोध नहीं है। अगर स्थिति देखा जाए तो जिसको बहुत विरोध हुआ है उसका वैराग्य भी उतना ही कड़ा रहता है, उतना ही तीव्र, उतनी ही लगन रहती है, जो बांदेलियों का उदाहरण देते बाबा। तो ये दो बातें हैं यहाँ पर। तो बाबा ने कहा समस्या कहाँ से आएगी? इस परिवार से, इस अलौकिक परिवार से। ये अलौकिक परिवार ही बीच बीच में विघ्न बन सकता है, तो क्या करो, यहाँ जो पेपर आएंगे, यहाँ जो बातें आएंगी, उनको प्रैक्टिकल बातें न समझ के क्या समझना? पेपर समझना। समझना ये पेपर है, एक समझना क्लास आगे बढ़ रही है, समझना ये विघ्न विनाशक की डिग्री लेने का साधन है, एक मुरली में था ना, समझना कि ये अनुभव बनाने के लिए आ रहे हैं, आगे बढ़ाने के लिए, परिपक्व बनाने के लिए, मैच्योर बनाने के लिए, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आध्यात्मिक परिपक्वता लाने के लिए ये पेपर मेरे सामने आया है। क्योंकि ये पेपर होने के बाद इसको जब मैं पास कर जाऊंगा तब फिर मैं वो नहीं रहूंगा जो पहले था, अब मैं आगे बढ़ चुका हूं। एक दो चित्र दिखाते हैं, किसी ने भेजा था कि एक जानवर है, एक हिरन है, जिसमें एक तीर लगा और वो घायल होकर गिर गया है। एक दूसरा चित्र बाजू में हिरन का, बहुत सारे तीर लगे हुए पर खड़ा है। एक हिरन है जो एक तीर लगा और गिर गया, अब वही हिरन कुछ सालों के बाद बहुत सारे तीर लगे हुए गड़े हुए परंतु गिरा नहीं है, वो खड़ा हुआ है। तो ये है परिपक्वता, पहना नहीं है। एक स्थिति है कि किसी ने कुछ बोल दिया और गए नीचे 10 दिन तक डिप्रेशन में। फिर दूसरी स्थिति है किसी ने कितना भी कुछ कहा परंतु हम अचल अडोल खड़े और वो तीर जो लग रहे हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा लग रहे हैं। अगर अज्ञानियों के द्वारा लगते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अगर ब्राह्मणों के द्वारा कुछ होता है तो फिर वहां फील होता है क्योंकि वो भी ज्ञानी हम भी ज्ञानी, ज्ञानी होते हुए भी ज्ञानी है इसके लिए ज्यादा फील होता है क्योंकि ज्ञानियों के हिसाब किताब ज्ञानियों के साथ है, ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुक्तु होने हैं, अव्यक्त महावाक्य है, इसके लिए सारे हिसाब किताब यहीं से निकलेंगे और उसको अचल अडोल होकर इस पेपर इसको पेपर समझना, अनुभवी बनाने के लिए आए हैं, पेपर है पास करना है, क्लास आगे बढ़ रही है, विघ्न विनाशक की डिग्री लेनी है, ये सारे संकल्प अपने अंदर रहना चाहिए परंतु वो पता रहना चाहिए, वो टाइम भी भूल जाता है, पेपर जाने के बाद पता चलता है ये पेपर था, क्योंकि पेपर जो आता है व्यक्ति के रूप में आता है, परिस्थिति के रूप में आता है, ऐसा बोल के नहीं आता है कि मैं पेपर हूँ, यहाँ लिखा के अगर आ जाए कि मैं माया हूँ तो फिर हम एकदम अलर्ट हो जाए, सावधान हो जाए, सारे हमारे अस्त्र शस्त्र निकाल ले, ज्ञान और योग के अच्छे अच्छे पावरफुल महावाक्य, परंतु वो आता ऐसा है कि उसका वो सब श्वेत वस्त्र और बैच पहनकर आता है तो समझ में नहीं आता है कि ये भी माया हो सकते है। माया तो काला काला इस तरह आना चाहिए ना जिसको हम पहचान ले ये माया है, परंतु ये तो रूप बदल के, जैसे रावण ने रूप बदल के आया ना तो सीता चोरी हो गई, तो ये भी ऐसा हो जाता है, वो रूप बदल के आता है, साधु का रूप धारण करके आया, वो साधु का रूप धारण करके एकदम साधु अर्थात पवित्र दिव्य जिसमें बहुत पवित्रता है ऐसा रूप धारण करके माया। तो ये थी चौथी पांचवी परीक्षा। तो सबसे पहले बाबा ने कहा निश्चय की परीक्षा, उसमें तो पास हो गए, दूसरी फिर तन की, फिर मन की, उसके बाद में अलौकिक संबंधों की परीक्षा, तो ये सब परीक्षाएं आएगी। फिर इसी में बाबा ने साकार का उदाहरण दिया है और कि तब भी साकार निमित्त था, अब भी साकार निमित्त है, अव्यक्त में अब भी साथ में है। एक दूसरा, जितना इससे स्नेह और स्नेह होगा उतना ही सहयोग मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मा से स्नेह अर्थात सारे सिजरे से स्नेह, एक ब्रह्मा से कनेक्शन अर्थात सारे ब्राह्मण परिवार से कनेक्शन है। तो ये जो ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा, बाबा ने कहा कि सारे साकार में सर्वश्रेष्ठ है, इसके लिए इससे जितना स्नेह उतना सहयोग। और एक बात जो छूट गई है वो बाबा ने कहा, ये जो कलियुगी पहाड़ है, ये जो समस्या है ये जैसे पहाड़ है और इसमें ये तीन चीजें चाहिए जिसकी यहाँ पर रिजल्ट देखी जाएगी, स्नेह सहयोग और शक्ति, ये समस्याओं में इन चीजों इन इनकी उंगली लगाकर इस पहाड़ को उठाना है तो फिर प्रत्यक्षता होगी। तो हमारा स्नेह कितना है उसकी परीक्षा होगी, सहयोग कितना है उसकी परीक्षा होगी, और हमें शक्ति कितनी है उसकी परीक्षा होगी। अगर कोई ऐसा ही कहते रहे कि मैं बहुत बलवान हूँ बहुत बलवान हूँ बहुत बलवान हूँ, उसको कौन मानेगा, दिखाओ बलवान हो। अगर अर्जुन ऐसा ही कहता था ना कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, परंतु फिर बीच में करना आता है, क्या कहता है कि अगर तुम हो तो दिखाओ सिद्ध करो, मैं ललकार रहा हूं तुमको, तो दोनों तैयार हो जाते परंतु वो कुछ कारण से नहीं हो पाती तब युद्ध, वो रंगभूमि की बात है शुरुआत में। तो अगर हम ललकार रहे हैं तो उसको सिद्ध भी करना पड़ेगा, तो स्नेह की परख होगी। ऐसे हम नहीं कह सकते हमारा बाबा के साथ बहुत प्यार है, परमात्मा प्रेम पर गहरी गहरी मुरलियां चली है, वो पढ़ो तो पीछे कदम रखने पड़ेंगे थोड़े, जो दोनों हाथ खड़े करते हो कि बाबा से स्नेह किसका ज्यादा है, दो दो हाथ खड़े हमारा है, हमसे ज्यादा और किसी का नहीं है, निकालो बीच से 70s की परमात्मा स्नेह पर मुरली, थोड़े से कदम पीछे हट जाएंगे, ये है परमात्मा स्नेह। तो स्नेह सहयोग और शक्ति इन तीन के आधार से बाबा ने कहा पेपर आएगा। फिर ब्रह्मा की जो बातें चल रही थी, ब्रह्मा से प्यार स्नेह सहयोग, फिर उसके बाद में परिवार, ये परिवार सर्वश्रेष्ठ परिवार है, इस परिवार में जितना स्नेह और समीपता होगी दैवी परिवार में उतनी स्नेह और समीपता होगी। और साथ साथ बाबा ने ये कहा है कि इस परिवार से भी थोड़ा न्यारा भी रहना है, इस परिवार में फंसना भी नहीं है, इस परिवार से ही परिस्थिति आनी है, तो इस परिवार के प्रति भी घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत कुछ भी उत्पन्न ना हो, क्योंकि प्रभु परिवार है, परमात्मा को पसंद है, ये प्रभु प्यारों का संगठन है। इसके लिए कितना सूक्ष्म ये बैलेंस है, परिस्थिति आएगी इन्हीं से, प्यार भी जितना उनके समीप रहेंगे उतना ही उधर समीप रहेंगे फिर मिलेंगे इधर। तो जब हमने भगवान को पुकारा था, हे अविनाशी सर्जन आकर इंजेक्शन लगाओ, परसों की मुरली में था ना, तब हमने ये नहीं कहा था कि इंजेक्शन हमको लगाओ, पर साथ साथ बहुत सारे हमारे पेशेंट्स भी है, पूरा हमारा जमघट है, समूह के समूह है सबको लगाओ तो हमने कहा ही नहीं था, हम सबको, हमने कहा था मुझे लगाओ, हे पतित पावन पावन बनाओ, दुख छुड़ाओ, हमने ये तो नहीं कहा था ये सबके दुख छुड़ाओ, हमने अपने लिए कहा था। वो तो मिल गया पर साथ में परिवार भी आ गया, एक तरफ तो बहुत खुशी और एक तरफ परिवार मांगा ही नहीं था हमने, हमने तो तुमको मांगा था, ये कहां से दे दिया ब्याज में तो ये एक दूसरी बात यहाँ पर बाबा ने कही है परीक्षाओं की। तो और भी कोई बात रहेगी तो इसमें हाँ, तो बाबा ने एक होमवर्क दिया है फिर यहाँ पर कि विदेही बनना लक्ष्य है। विदेही क्यों नहीं बन पाते, विदेही बनने में कमी क्यों है, तो विदेही को युगल बना दो तो विदेही बनने में सही होगी, विदेही बनने में मुश्किल नहीं होगी, सहयोग मिल जाएगा। तो विदेही को युगल बनाना, युगल अर्थात संसार में युगल का अर्थ होता है जोड़ा, पेयर, पर बाबा जब युगल शब्द का प्रयोग किया जाता है वो स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ, साथी जो है उसके लिए कहते हैं युगल, परंतु संसार में युगल शब्द इसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता। युगल अर्थात दो लोग मिलके जो होता है, जोड़ा जो होता है ना, उसको युगल कहा जाता है, युगल प्रतिस्पर्धा इस तरह से। तो पर बाबा युगल शब्द का हस्बैंड और वाइफ, स्पाउस जिसको कहते हैं ना, उसके लिए युगल शब्द का। तो विदेही बाप को युगल बना दो तो क्या हो जाएगा, विदेही बनने में सहज हो जाएगा। तो इस पूरी मुरली में टोटल 7-8 बातें हैं। सबसे पहली जो बात कही बाबा ने, संपूर्णता, संपूर्णता की परख, अर्थात संपूर्णता अर्थात परख शक्ति, हर बात को हर रूप से हर रीति से परखना, एक। दूसरी बात चित्र विचित्र और चरित्रवान। तीसरी बात बहुत सारे प्रश्न पूछे उसमें मुख्य जो बात आई है जितना चेकिंग करेंगे उतना ही चेंज, उतना ही अटेंशन होगा। और एक बात जो चौथी बात है जो हम भूल गए हैं वो है अव्यक्त स्थिति और अलौकिकता, ये बात हमने नहीं कही। तो जितनी अव्यक्त स्थिति की परख क्या है, जितनी अव्यक्त स्थिति उतनी ही चलन अलौकिक, ये चौथी बात। पांचवी बात, परीक्षाएं बहुत सारी आएगी, निश्चय की परीक्षा और जो हमने पेपर्स बताए उसमें क्या करना है वो सारी बातें। छठवी बात जो कही है वो है साकार का उदाहरण, कैसे उसने सबूत दिया, विल करना दूसरी बात है, कैसे उसने सबूत दिया या फिर कैसे उससे प्यार रहना चाहिए तो क्या हो जाएगा, और कैसे परिवार का उदाहरण। फिर उसके बाद में छठवीं बात जो कही है विल करने की, पेपर सारे, छठवीं बात है सारे पेपर्स और उसमें कैसे पास होना है। सातवीं बात विल करने की, विल करना अंदर बाहर जो बुराई है उसको विल कर दो, दे दो, समर्पण कर दो तो क्या बन जाएंगे, विल पावर आ जाएगी। फिर उसके बाद में कर्म बंधन, नौवीं बात कर्म बंधन की, कर्म बंधन की रस्सियों को काटो। और दसवीं बात जो होमवर्क है वो है विदेही को युगल बनाओ। तो ये मुरली टोटल 10 भागों में विभाजित की है, इसको फिर से पढ़ना, आज ही पढ़ना वो भी, और थोड़ा जल्दी पढ़ना 6 घंटे के अंदर अभी कल की पढ़नी है, वही होता है ज्यादा, कल किसकी बारी है, तो कल की जो मुरली है वो भी पढ़ना, पहले तो आज की तो पढ़ी होगी अगर जिन्होंने नहीं पढ़ी है, क्योंकि अभी हमने थोड़ा डिस्कस किया है पॉइंट वाइज डिस्कस किया है, टुकड़े टुकड़े कर दिया है। सबसे मेन काम ये करना है कि इसमें टॉपिक कहाँ खत्म होता है और दूसरा टॉपिक कहाँ चालू होता है, क्योंकि मुरली जैसे हमने कहा ना, कंटिन्यूअस स्पीच होता है कि जहाँ एक टॉपिक एंड होता है उसी को पकड़ के बाबा दूसरा चालू करते हैं। ये जो है ना, इसमें फिर याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो टॉपिक कोई है नहीं। जैसे दादी जानकी जी का भी ऐसा ही है, साकार मुरली है क्लास अर्थात, वो पूरा उसमें कोई क्रम नहीं है। जहाँ वाक्य खत्म होता है उसका जो अंतिम शब्द है उससे नया वाक्य चालू होता है। भारत महान देश है, देश बहुत सारे हैं, उसमें ये देश बहुत अच्छा है, अच्छाई में ये है, वहाँ के फल अच्छे, फलों में आम सबसे अच्छा है, आम में बीज होते हैं, बीज से ये होता है। ये एक वाक्य जहाँ खत्म हो रहा है वहां से दूसरा वाक्य चालू होता है। अब किसी को कहो क्या था तो कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस स्पीच है। जहाँ एंड हो रहा है वहीं से दूसरा, तुम्हें लक्ष्मी नारायण भी बनना है। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, सतयुग में हर चीज सस्ती होती है, सस्ती यहाँ कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा बाबा जी तब थे, सस्ता बहुत सारा चीज। अभी भारत में ये हाल हो गया है, भारत अभी कंगाल हो गया है, भारत अभी मांगते रहता है। तो मांगना तुमको बिल्कुल नहीं है, तुम्हें दाता के बच्चे हो, तुम मास्टर दाता हो, तुम मांगने से मरना वाला। अब ये मुरली है, मरना है तो तुम तो एक दिन तो सबको मरना ही है, मौत सामने खड़ा है, विनाश होने वाला है, विनाश की गारंटी है, कोई भी बचना नहीं है, बचने वाला नहीं है। बचेंगे वो जो बाप की याद में रह गया, सारा मदार है याद पर। तुमको याद की यात्रा करनी है, याद के साथ साथ सेवा भी होनी चाहिए। सेवा में तुमको फिर पर्चे भी बांटने हैं, तुमको सबको संदेश देना है, उल्हाना नहीं आना चाहिए, परंतु याद में स्थिति भी रहनी चाहिए। स्थिति के लिए फिर से सारा मदार है याद पर। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति याद प्यार और नमस्ते। तो ये है मुरली। अब बताओ कि कैसे याद रखेंगे। चलो एक एक्सरसाइज ये भी रखेंगे, जो वाक्य ये बंद करेंगे जैसे अंताक्षरी होते हैं ना, हम एक दिन करेंगे इधर, जहाँ खत्म किया जो अंतिम वाक्य है उसी से नेक्स्ट में। तो ये जो है ना, ये मुरली है साकार। तो ये भी मुरली, आज की जो मुरली आप देखोगे डेढ़ पेज की है खाली, परंतु उसमें इतनी गहराई है, कहाँ खत्म हो रहा है और कहाँ दूसरा चालू हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। इसके लिए मैं जब भी कोई मुरली पढ़ता हूँ उसको टुकड़े टुकड़े फ्रैगमेंट, कहाँ टॉपिक एंड हो रहा है और नया टॉपिक कहाँ चालू हो रहा है। एक ही पैराग्राफ में तीन टुकड़े हैं, अगर आप देखो तो आपको ढूंढना पड़ेगा ये 10 बातें जो हमने कही ना। अगर ये पहली बार कोई मुरली पढ़े तो कहेंगे कौन सी 10 बातें, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो उसी में इस तरह से उसको फ्रेगमेंट करना है। कल की भी मुरली ऐसी बड़ी है, सुशील भाई पढ़ेंगे। ओम शांति।